बाप के अलावा वो दूसरी तरफ भी भटकती होगी तो समय प्रधान ही रहेगी। मानो सामने भी बैठे हैं, सामने बैठे हैं लेकिन बुद्धि कहीं बाहर की दुनिया में भटकती है तो क्या कहेंगे? बुद्धि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन याद ही नहीं करते, उनकी बुद्धि के निशानी है याद, वो धारणा करेंगे और भी रहन करते हैं कि बाप को याद करें तो तुम पावन बनेंगे। ये किसको भी समझाना तो बहुत है, बाप चोर की बात का ही का वर्षा बच्चों को ही देखे क्या, बच्चों को ही देखे बच्चे कितने, बाप के बच्चे कितने हैं? पांच सौ करोड़ को सर की बात का ही वर्षा नहीं देते, पांच सौ करोड़ को तो नहीं देते हैं सर की बात का ही वर्षा, कितने को देते हैं? सर की बात का ही का वर्षा, बात का ही प्रजाई नहीं, जरूर से ज्यादा आया था तब के सिर जयंती भी मनाते हैं ना, जयंती भी कब मनाई जाती है? तो बाबा प्रैक्टिकल में आकर के तार से बजाएगा तब ही तो जयंती मनाएंगे, जय जयकार करेंगे, बड़े बड़े आदमियों की जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है? आकर के उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है ना, सारी दुनिया भगवान को याद करती है तो जरूर भगवान बाप ने कुछ आकर के किया होगा ना, ऐसा किया होगा जो दुनिया में और कोई न किया हो। कृष्ण राम आदि सब होकर के गए हैं, सब तो उनकी जयंती मनाते आए हैं ना, सबको याद करते नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता कि भगवान कैसे आकर के वर्षा दी थी, कौन सा वर्षा बादशाही का वर्षा, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, क्या नहीं थी मुझसे कि भगवान कैसे आते हैं और कैसे आकर के कौन सा वर्षा दी थे, समझते हुए का सुखधाम और शांति धाम और ज्ञान सरोवर का वर्षा दे देते, अब ऊंचों का ज्ञान सरोवर सुखधाम शांति धाम का वर्षा देते होंगे क्या? याद करने की बुद्धि नहीं है, बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्पित आशिक हो, मैं जब आया हूँ भक्ति मार्ग में तुम कितने बच्चे खाते, समझते तो यह दिक्कत है, आगे करने से भगवान को पाने का रास्ता मिलेगा, सारी संत शास्त्र भी रास्ता बताएंगे, परंतु भगवान की कोई भी मिलाई नहीं है शास्त्रों की, एकदम फर्स्ट क्लास भी भारत में बनते हैं तो एकदम थर्ड क्लास भी यहाँ बनते हैं, कैसे पत्थर ठिककर भिक्कर में परमात्मा है, वो कौन सी क्लास की है, ठिककर बुद्धियों को परमात्मा बांध करके बैठ जाते हैं, उनको थोड़ी सी माया भी दो कर लगी और अनित्य बुद्धि हुई, थोड़ा सा धक्का लगने से ही टूट पड़ते हैं, ऐसे में ही भगवान को मान लेते हैं व्यापक, परमात्मा मानते हैं तो मनुष्य पत्थर सिक्कर में जाए परमात्मा को ढूंढते रहते, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था, कितने आया था भारत में ही दोनों तरह के बता दिए, कोई फर्स्ट क्लास तो कोई थर्ड क्लास। तो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। माने जितनी बाप की महिमा है उतनी भारत की भी महिमा है, किसी को ये रास्ता बताते ही नहीं है। भगवान से प्रीति कैसे जुटे उसे भारतवासियों को ही बाप आकर जो सिखलाते हैं, उसको कौन सा रास्ता नहीं बताते है? कृष्ण यह रास्ता नहीं बताते है, कौन सा रास्ता नहीं बताते है? अरे भगवान से प्रीति दूरी बनाने का रास्ता कृष्ण नहीं बताते है। वाक्य आते भी भारत में श्री जयंती भी मनाते हैं परंतु जानते नहीं है। आते भी किसी है भारत में आते हैं, पीढ़ी के चित्र में भारत का चित्र कहीं जाए, कोई है चित्र भारत का है? कौन सा चित्र की सही आदर पड़ा हुआ है भारत दिशंगा के रूप में, पर बाजू में ब्रह्मा काली की चित्र खड़ा हुआ है, इंग्लैंड नहीं आते क्या है? ब्रह्मा के कल में शिव बाबा नहीं आते क्या? शिव बाबा तो आते हैं लेकिन बाप है जो वर्षा लेने वाला है उस रूप में नहीं आते। इन चित्रों से बात है सुबह को न जानने के कारण अपने अपने गुरु की जयंती मनाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि तेरे सही भगवान उनका नाम है सिंह, इसीलिए तुम लेकर तेरी उसकी जयंती ही रे तुम्हें जयंती है, बाकी सबकी जयंती है कोड़ी के लिए। ऐसे लिखने से भी बिगड़ते हैं क्यों? ऐसे जब लिखेंगे तो जो कृष्ण के भगत होंगे, राम के भगत होंगे या शंकर के भगत होंगे, विष्णु के भगत होंगे, उनको उनको विष्णु आता है। इसलिए हरेक चित्र में तुमको श्री भगवान वास जरूर लिखना। ब्रह्मा वो आते हैं, विष्णु वो आते हैं, शंकर वो आते हैं, कृष्ण वो आते हैं, नहीं तुम्हें किसी भगवान वाले नहीं तो सब हंगामा भी कर देंगे। ऊपर में परमपिता परमात्मा श्री भगवान वास होगा तो सृष्टि में रहेंगे। कोई बच्चे पूरा नहीं समझाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी का पहला वार बुद्धि पर होता है। बाप से बुद्धि और तोड़ देती है कौन? माया देती बुद्धि जब तोड़ देती है तो एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं। देवालियों से बुद्धि होगा तक जाते हैं तो बाप की गति की बुद्धि हो ना। तुमको प्रीत रखनी है विचित्र बुद्धि ही बाप से, कैसे बाप से? जो विचित्र है और विदेही है, विदेही माने विपरीत, दीर्घानी के विपरीत, दीर्घानी से प्रीति रखना नुकसानकारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ती है, बन गया क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं। बात नहीं है, कितनी की बुद्धि से तो बात आती है। किस बात की? नाम रूप में फंसने की बात आती है। बात से विपरीत बुद्धि हुए तो जरूर कहीं ना कहीं किसी के नाम रूप में फंस पड़े, नहीं तो कहीं से खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात यह है गीता के भगवान की, सार मदार इस बात पर। और तो सभी का अपना अपना शास्त्र ठीक है, भारत वासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं। क्रिश्चियंस का अपना शास्त्र बाइबल जानते हैं? किसने किसने बोला बाइबल? किसने बोला बाइबल में जो बातें हैं वो बोली हुई किसकी है? क्राइस्ट की बोली हुई है। तो और धर्म वाले तो जानते हैं, भारतवासी नहीं जानते है। अशुभ देवी देवता धर्म की तुम समझाते हो, भारतवासियों का ईश्वर के उच्च धर्म है। ईश्वर उच्च कुल होता है ना, शादी में भी उच्च कुल चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सूर्य का पति मिले। अब कृष्ण तो प्रिंस था, वो किसी का पति तो था नहीं। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति नारायण था। और कृष्ण को रानी का पति तो था नहीं। कृष्ण राधे का पति था नहीं? किसका पति था? कृष्ण तो लक्ष्मी का पति था। ये भी भारतवासियों को कुछ पता नहीं है। अब सारा मदार है गीता पर। गीता का भगवान कौन है? इसमें ही तुम्हारी विजय होगी। इस बात में विजय होगी तुम्हारी मैंने किसकी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी की। किस बात में विजय होगी? गीता का भगवान कौन कौन है? त्रिमूर्ति सिंह भगवान वास माना। त्रिमूर्ति सिंह भगवान वास माना कौन? इस बात में ही विजय होगी। तुम बच्चों की इस बात में ही विजय होगी कि त्रिमूर्ति सिंह भगवान वास अर्थात कौन? त्रिमूर्ति सिंह भगवान वो कौन? और कृष्ण भगवान वास कहते हैं वो कौन? कृष्ण माने ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, माने कृष्ण की आत्मा भगवान का रूप धारण नहीं करती। मरते हैं तो भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। अंत समय में जय जयकार किसकी होती है? राम जी नाम की। अंत मत सुगति जैसे इलेक्शन में जाते हैं ना, तुम किसको वोट देते हो? अभी तुम भी पूछते हो गीता का भगवान त्रिमूर्ति शिव है या श्री कृष्ण है, किसको वोट देते हो? जैसे वोट लेते हैं ना, हमारे को वोट देते हो या फलाने को वोट देते हो? या फलाने जिसको कहा कृष्ण बनाम ब्रह्मा को वोट देते हो या हमारे को वोट देते हो? अच्छा दोनों में जाति सुख कौन देंगे? इसलिए भी तुम पूछते हो गीता का भगवान शिव है या कृष्ण? सुख देने वाला कौन है? देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। दो गीता का भगवान कौन, किनको वोट देने वाले को कहेंगे ठीक बुद्धि, और कृष्ण को वोट देने वाले को कहेंगे विपरीत बुद्धि। ये तो बिल्कुल भारत का इलेक्शन हो गया, अगर समझते हैं शिव है गीता का भगवान तो मोदी जयंती, क्योंकि प्रीति बिंदु है कृष्ण कहेंगे तो विपरीत बिंदु भी लगता की हो जाएंगी, कुछ भी नहीं पाएंगे। अब इसमें बुद्धि चाहिए कि हम कैसे युक्ति रखें, किसको वोट देते हैं। तुम तो अभी शिव बाबा को वोट देते हो तो विजयंती हो जाते, तो ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं। बच्चे चलते चलते भूत पड़ते हैं, अभी देखो तो प्रीत बुद्धि है और अभी देखो तो प्रीत भूत करते भूत करते, कोई बात से बिगड़े तो कभी फिर याद भी नहीं करते, याद भी नहीं करते, चिट्ठी भी नहीं लिखते। हाँ वो या प्रीत बुद्धि नहीं, बाबा भी छह आठ मास भगवान कोई का रथ हाँकता होगा, तो फूल रथ की तो बात नहीं हो सकती। जरूर शरीर को रथ कहा जाता है, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु, ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मनुष्यों ने, फिर भूल क्यों जाते हैं? कौन से रथ की बात है? तो एक अर्जुन के रथ की बात है क्या? भगवान क्या सिर्फ एक अर्जुन के रथ में आकर के ज्ञान सुनाता है? एक ही गाया जाता है, नंबर वार तो ढेर होते हैं,
रुद्रमाला के मणकों में मुख बने हुए होते हैं, रुद्राक्ष के मणकों में जो मुख होते हैं किसी में एक किसी में अनेक, वो मणके ही मुख लेने की यादगार है। तो अनेक मुखों में से कोई एक मुख वाला भी जरूर होगा, क्योंकि भगवान एक है तो उसकी बात भी एक ही होगी। तो वो एक कौन है, एक मुख वाला, ये कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातों को क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते? कोई नहीं जानते उसमें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए छूट है क्या? कोई नहीं जानते माने 500 करोड़ में कोई भी नहीं है जो इस बात को जानता हो कि गीता किसने गई, तो जरूर कोई किसको बताना पड़े, जरूर भगवान को ही बताना पड़े। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। तो अपना त्योहार कौन सा है, है? एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिव जयंती या त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिव जयंती को भारत में कहा भी नहीं जाता है। क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका मतलब भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि भारत में भगवान शिव आकर के कोई जन्म लेते हैं, तो स्थूल जन्म की तो बात ही नहीं है, तो निराकार है। जरूर उसका दिव्य जन्म होता है, वो प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। अन्य मनुष्यों के सदस्य वो जन्म नहीं लेता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे बच्चा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे नहीं। तो हमारा त्योहार है असल में त्रिमूर्ति शिव जयंती, सिर्फ एक ही त्योहार है बस। सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों क्यों नहीं कहनी चाहिए? जयंती आत्मा की मनाई जाती है या शरीर की मनाई जाती है? शरीर का ही जन्म मरण होता है, आत्मा प्रवेश करती है तो ये थोड़े कहते हैं कि जन्म दिन हुआ, क्योंकि आत्मा के प्रवेश करने का पता ही नहीं चलता। गर्भ में कब प्रवेश किया पता ही नहीं चलता। वो आत्मा ही शरीर धारण करके जब बाहर संसार में प्रत्यक्ष होता है, जीवात्मा बनकर संसार में, तब जन्मदिन मनाते हैं। तो शिव तो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है या जीवात्मा का नाम है? आत्मा का नाम है ना, तो शिव जयंती कहना रांग हो जाता है। जरूर शिव कोई मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, फिर एक मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या तीन मूर्तियों के द्वारा? त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो तो शिव को निराकार समझ लेते हैं। मूर्ति शब्द डालने से साकार की बात आ जाती है। एक मूर्त और एक अमूर्त, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो कि दैवी सुराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर लिखते हो या नीचे लिखते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है किसका, किसका अधिकार? जो सुप्रीम सोल आत्मा बाप शिव के बच्चे है, नंबर वन उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म लेने से ही साबित होता है कि अधिकार मिलना चाहिए। तो शिव अकेला आता है, शिव की जयंती अकेली होती है या तीन मूर्तियों के साथ होती है? शिव अकेला कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, शिव की प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है तीन बच्चों के साथ। यज्ञ के आदि में तो शिव जयंती की बात ही नहीं, वो तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे ही मनाते चले आ रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती 38वीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती 58वीं, ऐसे ही नाम दे दिया। एक तरफ बताते भी हैं कि शिव की प्रवेशता का पता नहीं चलता, तो फिर ये कैसे कह सकते कि इतने नंबर की त्रिमूर्ति शिव जयंती? जरूर है, दुनिया वालों की परंपरा के अनुसार ही मान लिया ना। तो 36 में तो सोल प्रवेश होती है, जिस समय प्रवेश होती है उस समय भी तीन मूर्तियां चाहिए, लेकिन उसको जयंती नहीं कहते। जयंती तब कहे जब तीनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जो बाप की जयंती तो बच्चों की जयंती, तो नीचे लिखते हो त्रिमूर्ति शिव के चित्र के नीचे कि दैवी सुराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किससे जन्म लिया है? त्रिमूर्ति शिव बाप भगवान से जिन्होंने जन्म लिया है, जो ईश्वरीय संतान है उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको दैवी सुराज्य मिलना चाहिए, क्योंकि बाप ही आकर के, भगवान ही आकर के दैवी सुराज्य की स्थापना करते हैं, और कोई धर्म पिता में ये ताकत नहीं है। तो आते हैं और दुनिया और ही जाती नरक बनती चली जाती। तो जन्म सिद्ध अधिकार है, शिव भगवान बाप भी है ना, तो बाप का वर्षा जन्म सिद्ध अधिकारी के रूप में बच्चे को मिलना चाहिए ना। जरूर आते हैं, आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं आते हैं और 69 तक पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं और फिर बाद में बच्चे अपने आप वर्षा लेते रहते हैं। नहीं, स्वर्ग का वर्षा बच्चों को पहले बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा या पहले संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा? पहले तो मन बुद्धि में एहसास होना चाहिए। जो बच्चे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लायक है, पहले उनके अंदर ये प्रत्यक्षता होनी चाहिए कि मैं अमुक नंबर में ये वर्षा लेने वाला हूँ, इस नंबर का मैं मणका हूँ। हर धर्म में जो माला सिमरी जाती है, उस माला में मेरी आत्मा रूपी मणके का ये स्थान है। स्वर्ग के मालिक बने हुए राजयोग सीखने से। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया, पहले पहले यह चित्र होना चाहिए, अंदर कोई घुसे तो पहले यह चित्र देखिए। कौन सा चित्र? तो मूर्ति का, माना पहले बाप की पहचान देनी पड़े। त्रिमूर्ति से वो ऊपर में लिखना चाहिए। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता का भगवान कौन? एक तरफ शिव बाबा की महिमा, क्या महिमा? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है कौन है? शिव बाबा। शिव बीज रूप है या शिव बाबा बीज रूप है? शिव बाबा कहे तो साबित होता है कोई शरीरधारी है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन दिया है मुरली में ही, शरीर और आत्मा के मूल को बाबा कहा जाता है। ऐसे तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, उसका एक ही नाम है शिव, वो नाम कभी बदलता नहीं है, एक ही संबंध जुटता है बाप और बच्चों का, दूसरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं, बच्चों की भावना के अनुसार। तो मनुष्य शक्ति का बीज रूप है कौन? मनुष्य शक्ति का बीज रूप सिर्फ आत्मा होगा या जीवात्मा होगा, या जीवात्माओं में भी मनुष्य आत्मा होगा? जीवात्मा तो अनेक है, कीट पशु पक्षी पतंगे ये जीवात्मा नहीं है, ये भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें भी वो पहले बाप किसका है? मनुष्यों का बाप। तो मनुष्यों का बाप मनुष्य रूप में ही होगा या सिर्फ आत्मा के रूप में होगा? मनुष्य सृष्टि का बाप तो जरूर मनुष्य रूप में होना चाहिए। जो भी धर्म वाले हैं सब उस सृष्टि के बीज आदि स्वरूप को मानते हैं। कोई एडम कहता है, कोई आदम कहता है, कोई आदिदेव कहता है, कोई आदिनाथ कहता है, तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदि है, ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व मन 500 करोड़ की डायरेक्ट सदगति करता है क्या? डायरेक्ट तो नहीं करेगा। जब बीज है तो पहले बीज की सदगति करेगा कि सारी मनुष्य सृष्टि की करेगा? पत्तों पत्तों की करेगा क्या? पत्तों पत्तों को पानी देने से कभी वृक्ष फलीभूत नहीं होता, बीज को पहले पहले जल दिया जाता है तो सारा वृक्ष सरसब्ज हो जाता है। तो बीज रूप ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव पुनर्जन्म रहते हैं, पुनर्जन्म रहते हैं माने बार बार जन्म नहीं होता, नहीं। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उनका पुनर्जन्म होता है, बाप से सिर्फ एक ही बार आता है, और जब आता है तो जन्म सिद्ध अधिकार उस बच्चे को मिलता है। किस बच्चे को? हेवनली गॉड फादर का जो बच्चा है पहला पहला। मुरली बोला गॉड फादर इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु देव देव महादेव कहते हैं। देवताओं की तीनों मूर्तियों में बड़ा किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर। इसलिए भारतीय शास्त्रों में ये गायन है, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। युग बल के आधार पर विश्व की बादशाही ली है, बाहुबल के आधार पर विश्व की बात सही नहीं है। बल शास्त्रों में तो बाहुबल का युद्ध दिखाई दिया है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले बाहुबली है या योग बली है? बाहुबली है तो वो तो बाहुबली की महिमा करेंगे। भगवान आकर के बाहुबल नहीं सिखाता, भगवान को बाहु है ही नहीं, वो तो दूसरे का तन लेता है। तो बताया पुनर्जन्म रहित है माने उसका एक ही बार जन्म होता है, तो जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही एक बार होता है तो अनेक रूपों में होगा या एक रूप में होगा? अरे अगर अनेक रूपों में जन्म हो तो पुनर्जन्म भी कहा जाएगा। जितने जन्म लेगी आत्मा उतने ही रूप हो, 84 जन्मों में कोई फीचर एक दूसरे से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रस के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है वो एक ही बार प्रत्यक्ष होता है। कब प्रत्यक्ष होता है? संगम में भी कब प्रत्यक्ष होता है वो भी मुरली में बताई दिया। भगवान आते हैं राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट क्या देते हैं पढ़ाई का? नरसिंह नारायण ये एम ऑब्जेक्ट देते। सचिव के आदमी किसका राज्य था? शास्त्रों भी गायन है नारायण का राज्य था। तो नारायण का राज्य नरक को नारायण बनाने वाला वो परमात्मा शिव ही है, इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, ये तब की घोषणा है मुरली में, जब 10 साल के विनाश की घोषणा की गई थी। तब की गई थी 66 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, और ये घोषणा सिर्फ मुरलियों में ही की गई, पुराने जो 30x40 इंच के चित्र है उनमें भी ये घोषणा दी हुई है। विनाश के टाइम पर ही भगवान प्रत्यक्ष होता है, ये मान्यताएं विनाश के बारे में अलग अलग रूपों में हो गई है। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार, ऐसे टाइम पर ही भगवान बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। किसके द्वारा? जो विश्व का मालिक बनता है पहला नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसके द्वारा, उस विश्व के मालिक को सारी दुनिया मानती है। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया सिर्फ निराकार को ही मानती है, साकार को भी मानती है, सन्यासी भी मानते हैं, वो भी कहते हैं ओम नमो, नहीं ओम नमो नारायण। इसका मतलब नारायण के द्वारा ही परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए कहते हैं मेरे घर को भी याद करो, कभी कहते हैं मेरे को याद करो, कभी कहते हैं मेरे घर को याद करो। तो शरीर क्या हुआ? रहने का घर हुआ ना। तो 10 वर्ष की जो घोषणा की, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब उन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो साबित हो जाता है कि परमात्मा बाप के दो ही मुख्य बच्चे हैं, नर से नारायण बनने वाला और नारी से लक्ष्मी बनने वाला। उन्हीं को कहा गया है विष्णु और शंकर। ब्रह्मा कहाँ चला गया? ब्रह्मा की तो भारतवर्ष में वैसे ही पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनाई जाती है, भी तो वहां पूजा नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो अधूरा रूप है, दाढ़ी मूछी दिखाई जाती है वो देवताओं को होती है या मनुष्यों को होती है? मनुष्यों को होती है, देवताओं को दाढ़ी मूछी नहीं होती। तीन शेव होते हैं, उनको रेजर से दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विकार की निशानी उनको होती नहीं। जैसे जैन मुनि होते हैं तो जब जैन मुनि बनते हैं तो दाढ़ी के बाल उखाड़ते हैं। अब बाल उखाड़ने से थोड़े से निर्विकारी बन जाएगा। एक तो मुहावरा है, एक एक बाल की खान छूटी जाएगी तो विनाश के टाइम पर जो भी आत्मा सुधरती है, राक्षस से देवता बनती है, असुर से देवता बनती है, उनको ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है, गहरा ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ता है, कड़ा, जो मासी का घर नहीं है। सब उस पुरुषार्थ को नहीं पहुंच सकते। जो श्रेष्ठ और पावरफुल आत्माएं हैं वो उस पुरुषार्थ को प्राप्त कर पाती है। तो फिर बताया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो 66 से 5000 वर्ष पहले अगर पहुंच जाए, 1966 से 5000 वर्ष पहले उल्टा राउंड घुमा दे पूरा, तो कौन सा सन आएगा? 1966 जो था वो 66 आएगा ना। अच्छा, पूरा राउंड नहीं घुमाए, 10 वर्ष छोड़ दे, 10 वर्ष कम कर दे, तो कौन सा सन आएगा? है 76 आएगा ना। तो साबित हो जाता है मुरली के अनुसार कि 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में, पहले तो प्रत्यक्षता आपस में ब्राह्मणों में होगी या बाहर की दुनिया में होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बीज बाप है, तो बीज बाप की प्रत्यक्षता पहले जड़ों में आधार रूपों में होगी या बीज रूप आत्मा के बीच में होगी? जरूर बीज रूप रुद्रमाला के जो मणके हैं उनके बीच में होगी। तो 76 में बीज रूप आत्माओं के बीच में, रुद्र मत्स्यों के रूप में बीच में वो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूप जन्म लेता है, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बाप तो जन्म लिया, माना नारायण वाली आत्मा तो प्रत्यक्ष हो जाती है, नारायण के साथ वो नारायणी भी प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन लेकिन वो सिर्फ बौद्धिक स्तर तक बात है, ज्ञान से ही समझने की बात है। सारा ब्राह्मण इस बात को नहीं पहचान पाता। जन्म होता है तो पहले पता किसको चलता है? माँ बाप को पता चलता है, घर वालों को पता चलता है, कि मोहल्ले वालों को पहले पता चल जाएगा? पहले घर वालों को पता चलता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर बढ़ते बढ़ते सारे देश और सारे विश्व को भी पता चल सकता है। तो हिसाब है, क्या हिसाब हुआ? जो भी रुद्रमाला के मुख्य नजदीकी मणके हैं वो उस बात को पहले भाप जाते हैं। तो परमात्मा बाप के तो बच्चे हैं जिनके लिए गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, अच्छा भाई भाई है, तो साकार में है या निराकार में? साकार में। तो बाप साकार होगा या निराकार होगा? बाप भी तो साकार में चाहिए ना, जरूर कभी साकार में प्रैक्टिकल में वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बीज रूप आत्माएं हैं सारे मनुष्य सृष्टि की, मुसलमानों की बीज भी कोई होगी, क्रिश्चियन की भी कोई बीज होगी, बौद्धियों की भी कोई बीज होगी, और देवता धर्म की भी कोई बीज रूप आत्मा होगी। उन बीज रूप आत्माओं का वो बाप बना होगा प्रैक्टिकल में, तब तो ये गायन है। आपस में भाई भाई, ऐसे कैसे भाईचारा हो जाएगा? ऐसे शांति हो जाएगी क्या? कहने मात्र से, सिर्फ भाषण करने, मुख का भाषण करने से तो नहीं कुछ होगा, प्रैक्टिकल चाहिए। तो परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। पहले बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, क्या? ईश्वर का वर्षा, ईश्वर हमारा बाप है और विश्व की बादशाही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो पहले किसकी बुद्धि में बैठेगा? कौन से बच्चों की बुद्धि में? हाँ ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में, लेकिन कौन से ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में? दिव्य रूपों में भी कौन से? वो तो 108 रुद्रमाला के मणके दिखाए जाते हैं। जो चार धर्मों के चार बीज हैं, उनमें भी पहले किसकी बुद्धि में बैठेगा? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले होंगे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले होंगे, वो ही सृष्टि के माता पिता के रूप में संसार में सारे विश्व में प्रख्यात हो जाने वाली आत्माएं, उन्हीं की मूर्तियां पूजी जाती है त्रिमूर्ति में। तो बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र के नीचे लिखना चाहिए दैवी सुराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। उस तरफ से कृष्ण की महिमा बहुत करते हैं। किस तरफ? उस तरफ। इस तरफ ज्ञान मार्ग की तरफ या भक्ति मार्ग की तरफ? भक्ति मार्ग की तरफ। ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग कौन सा हुआ है? अंत समय जब होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, छुपा रुस्तम बाद में खुले, तब तक कृष्ण की ही महिमा होती रहती है। शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण मिल जाता है। जो शोध करता है उन्होंने ये बात शोध की है कि पहले गीता जो है उसमें कृष्ण का नाम नहीं था, बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। कृष्ण देवता के रूप में और लास्ट में जाकर के जब से तुलसीदास तुलसी को रामायण निकली तब से राम की भक्ति का प्रचार ज्यादा हो गया और वो बढ़ता ही गया। तो इस सब बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगलिंग में ही शूटिंग होती है। बाप बाद में ही प्रत्यक्ष होता है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है फिर खुद प्रत्यक्ष होता है। पहले नंबर का बच्चा कौन? पहले नंबर का पत्ता कौन? सृष्टि का कृष्ण बच्चा। पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं ना कि नई सृष्टि का आवर्तन जब हुआ तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया। तो बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर बच्चों का काम क्या है? फादर सो सन, सन सो फादर। तो कृष्ण की आत्मा 69 में शरीर छोड़ने के बाद, माना ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद किसको प्रत्यक्ष करेगी? किसको प्रत्यक्ष करेगी? बाप को प्रत्यक्ष करेगी ना? कौन करेगी? कृष्ण की सोल। तथा कथित तो ब्राह्मण बच्चे वो धन मुगालते में रहे, लेकिन कृष्ण की सोल जब बीज रूप स्टेज में स्थिर होती है तो वो अपनी असलियत पर आ जाती है, वो बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करती है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद दो अवस्थाएं रह जाती है, एक बीज रूप स्टेज और दूसरी सूक्ष्म शरीर की स्टेज। तो 69 से ही वो कृष्ण वाली सोल जिसने ब्रह्मा के रूप में मृदुल पाठ बजाया, शीतल पाठ बजाया, ज्ञान चंद्रमा माता के रूप में पाठ बजाया, वो माता का पाठ बजाने वाली आत्मा भी कोई ब्राह्मण बच्चे में मस्तक में प्रवेश होकर चंद्रमा के रूप में पाठ बजाती है, लेकिन अधूरा रूप है या संपूर्ण रूप है? अधूरा रूप है। वो बच्चा बच्चा नहीं जो बाप को पूरा प्रत्यक्ष न कर पाए, तब तक अधूरा रूप है। संपन्न रूप तब कहा जाए जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाए, सोलह कला संपूर्ण। तो भक्ति मार्ग में उस तरफ फिर कृष्ण की महिमा, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म सत्युगी दैवी सुराज्य का पहला राजकुमार श्री कृष्ण रहते ना, ऐसे करते तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके सामने जब कृष्ण की महिमा का सवाल आता है तो उनकी बुद्धि कहाँ जाती है? सतयुग में जाती है या संगम युग में जाती है? तो उनकी बुद्धि सतयुग में चली जाएगी। कि शास्त्रों में जो देवताओं की महिमा है या कृष्ण की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी बुद्धि वहां जाएगी सतयुग। लेकिन सतयुग की बातों का शास्त्रों में कोई महिमा के रूप में जिक्र है क्या? ऐसा नहीं। ये सारी महिमा किस समय की है? सारी ही महिमा संगम युग की है शास्त्रों में। चाहे वो देवासुर संग्राम हो, चाहे वो महाभारी महाभारत है लड़ाई का वर्णन हो, और चाहे वो रामायण युद्ध का वर्णन हो, शास्त्रों में जहाँ कहीं भी जो पौराणिक गाथाएं हैं उनमें सारा का सारा वर्णन इसी संगम युग का है। 84 जन्म में आने वाला ऐसे क्लियर करके बताना है कि कृष्ण 84 जन्म में आने वाला है, यानी पुनर्जन्म में आने वाला है। और भगवान तो पुनर्जन्म रहित है। स्विचिंग कैसे होती है? वो तो 84 जन्म स्थूल हो गए। या शूटिंग पीरियड में कैसे कहा जाए कि ये पुनर्जन्म रहित है और ये 84 जन्म लेने वाला है? या फिर है निश्चय अनिश्चय की बात। कोई अभी अभी ब्राह्मण बच्चा बना, बाप को बाप माना और अभी अभी निश्चय टूट गया, या कुछ समय के बाद निश्चय उखड़ गया। तो ब्राह्मण बना, जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार मिला और अनिश्चय होने से मर गया। तो जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हो गई। लेकिन भगवान बाप जिस स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, जन्म लेगा मुकर्र रथ के रूप में, तो वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आएगा क्या? जिसके लिए बाबा बोलते हैं मैं ठिकर बिस्तर पत्थर बुद्धियों में आता हूँ क्या? लोगों को सर्वव्यापी बताई दी है, कण कण जैसी गलीज आत्माओं के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी मेरे को व्यापक बताई दिया। मैं निश्चय बुद्धि में आऊंगा या अनिश्चय बुद्धि में आऊंगा? निश्चय बुद्धि में आता है। एक बार निश्चय पक्का कर लिया तो फिर उस निश्चय को कोई हिला ही नहीं सकता। तो क्लियर करके बताना है कि कृष्ण की सोल तो पीपल के पत्ते के ऊपर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि पीपल का एक पत्ता ऐसा है, थोड़ा सा भी हवा का झोंका होगा तो उस मायावी हवा के झोंके में हिलेगा, जरूर हिलेगा, माना निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलेगा जरूर। और वो वृक्ष कौन सा है जो बनियन ट्री के रूप में जिसकी यादगार दिखाई जाती है, जिसको गीता में लिखा है अश्वत्थ वृक्ष है, वो है बड़का वृक्ष। यादगार कहाँ बनी हुई है? एक ही वृक्ष है, सारी दुनिया के आने वाले सैलानी वहां जाकर के उस वृक्ष को जरूर देखते हैं, क्योंकि सारी मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का वो यादगार है। तो वो बड़का वृक्ष उस पत्ते में और पीपल के पत्ते में कितना फर्क होता है? वो हल्का होता है और वो भारी होता है। तो 84 जन्म में आने वाला ऐसे क्लियर करके बताना चाहिए कि 84 जन्म मरण के चक्र में आने वाला, घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला, उसको भगवान कैसे कहेंगे? भगवान को कभी हार्ट फेल हो सकता है क्या? भगवान हार्ट को और मजबूत बनाने वाला है राजयोग के द्वारा। इसलिए मुरली में बोला है राजयोगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनका हार्ट और ही मजबूत होता है। तो क्लियर करके बताना है कैसे नहीं निश्चय बुद्धि हुए और हाथ फेल हो गया, ऐसे में भगवान भगवान के रूप में परमात्मा पार्ट के रूप में पार्ट नहीं बजाता। पहले पहले ही अंदर घुसते कोई देखे तो समझे ये तो रात दिन का फर्क बताते हैं। क्या क्या फर्क बताते हैं? तो सारी दुनिया कहती है गीता का भगवान कृष्ण, और ये कहते हैं गीता का भगवान पुनर्जन्म रहे तो शिव शिव बाबा। शिव बाबा का नाम आने से कृष्ण चरित्र गुम हो जाएंगे। क्या चलो ब्रह्मा के तन दादा नेखराज के तन में भी आकर के 300-400 कन्याओं माताओं को भगाया, लेकिन वो एक्ट किसकी थी? वो कराया किसने? उस बूढ़े व्यक्ति की महिमा है क्या? कौन सी सोल की पावर है? जिस सोल की पावर है उसको तो भूल गए, फिर गीता झूठी सिद्ध हो जाएगी, कृष्ण का चरित्र गुम हो जाएगा। कृष्ण के चरित्र तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता, ये है ज्ञान का शास्त्र। और जीवन कहानी का शास्त्र कौन सा है जिसमें भगवान की जीवन कहानी दी गई? श्रीमद् भागवत पर नाम ही रखा गया भागवत, भगानी की कथा जिसमें है। लोग तो स्थूल अर्थ समझ लेते हैं, मनुष्य देह अभिमानी है, बाह पकड़ के भगाने वाले हैं, तो समझते हैं कि भगवान जी को बाह पकड़ पकड़ के भगाता होगा। अब भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, बुद्धि को हाथ कहा जाता है, भुजा कहा जाता है, तो बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ के खींचेगा, क्योंकि स्थूल हाथ को पकड़ के खींचेगा, वो तो बुद्धि को खींचने वाला है। तो जो भगवान के चरित्र हैं कृष्ण के रूप में भागवत में, वो कृष्ण के चरित्र हैं या निराकार शिव बाबा के चरित्र हैं? निराकारी स्टेज में रहने वाले के चरित्र हैं? किसके चरित्र हैं? इसलिए मुरली में आया है, इतनी रानियां थी उनको भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का, माना ब्रह्मा का नाम डाल दिया। किसने डाल दिया? दुनिया वालों ने। दुनिया वालों ने तो फॉलो किया है भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष। मूल रूप में डाला किसने? फाउंडेशन किसने डाला? शूटिंग किसने की? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों ने ये शूटिंग की कि असली जो गीता ज्ञान सुनाने वाला बीज रूप आत्मा थी उसको गुम कर दिया, और कृष्ण वाली सोल दादा लेखराज को प्रत्यक्ष कर दिया, उसको भगवान के रूप में माने बैठे कि वही भगवान, दुनिया माने या न माने अपनी ढपली बजाने से मतलब। अब दुनिया तो हर बात का प्रूफ मांगेगी, सिर्फ बातों से नहीं मान जाएगी, शास्त्रों से भी प्रूफ चाहिए, रिसर्च के बतौर कुछ ऐसे भी प्रूफ चाहिए जिसे बुद्धिमान लोग वैज्ञानिक लोग भी माने, रिसर्च करने वाले। ऐसे तो नहीं मान लेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण है, नहीं है, भगवान शिव है। तो शिव बाबा का नाम आने से कृष्ण के चरित्र गुम हो जाते, तो गीता झूठी सिद्ध हो जाएगी। कौन सी गीता? कौन सी गीता? दुनिया की गीता तो वो तो झूठी है ही, सच्ची गीता कौन सी? अरे जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने आकर के कोई धर्म ग्रंथ लिखा है या बोला है? बोला है ना, बाद में लिखा गया ना। तो ऐसे ही भगवान बाप आते हैं तो कोई गीता मुख से सिर्फ सुनाते हैं या गीता बैठ करके लिखते हैं? वो तो सिर्फ सुनाते हैं, गीता सुनाने मात्र से ही और राजयोग सिखाने मात्र से ही गीता के तदनुकूल रिजल्ट क्या आता है? स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। एक बार स्वर्ग स्थापन हो गया तो 2500 वर्ष तक वो स्वर्गीय सृष्टि चलती रहती है। तो धीरे धीरे पतन होता है, तब शासन करने के लिए शास्त्र लिखे जाते हैं। देवताएं अनुशासनहीन थे क्या? थे। देवताएं स्वतः शासन में रहने वाले थे, आत्मा के शासन में रहने वाले थे या अनुशासनहीन थे? वो तो आत्म की स्थिति वाले होते, उनको किसी भी प्रकार के स्थूल शासन की दरकार होती नहीं है, तो शासन की भी वहां दरकार होती नहीं। फिर शास्त्र तो बाद में लिखे गए, मनुष्यों ने लिखे। मनुष्य जब विकारी बुद्धि बना तब मनुष्य ने शास्त्र लिखे, भगवान तो बैठ करके नहीं लिखता है। तो उस गीता शास्त्र की बात नहीं। हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? हमारा भी गीता शास्त्र है, लेकिन हम उसका नाम क्या दिया है? शक्ति गीता। माना हमारी गीता के मुकाबले दुनियावी जो गीता है वो क्या हो गई? तो झूठी गीता होगी, जो मनुष्य की लिखी हुई है। भगवान आकर के लिखता नहीं है, भगवान आकर के सिर्फ मुख से बोलता है, और जो भगवान के बच्चे हैं वे फिर उसको लिखते हैं। तो जिन्होंने लिखी, जिन ब्राह्मण बच्चों ने लिखी, वो गीता कैसी हो गई? तो वो भी झूठी गीता हो गई, क्योंकि एक मनुष्य का बोला हुआ दूसरा जो कुछ भी लिखेगा तो जो का क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो वाइब्रेशन का फर्क पड़ जाएगा। दृष्टि के द्वारा जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो हाथ के लिखे हुए कागज के लिखे हुए पत्ते में वो वाइब्रेशन नहीं मिले। चलो कैप्रिकार्ड एक्यूरेट सुनाता है। कैप्रिकार्ड को बाबा ने भी बोला बच्चों के पास कैप्रिकार्ड होना चाहिए, बाबा की एक्यूरेट वाणी कैप्रिकार्ड सुनाता है। लेकिन टैप रिकॉर्डर या वीसीआर के द्वारा भी वाइब्रेशन मिलेंगे। दृष्टि के द्वारा जो फोर्स मिलता है समझने वाले को वो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अंतर पड़ गया ना। दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद सर्व का विष डाल दो, क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो ऐसे ही बात है, जो सत्य बात है वो ही आकर के सत्य ज्ञान सुनाते हैं। उस सत्य ज्ञान का नाम है गीता, शक्ति गीता। और गीता को माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीता पिता, किसी ने सुना नहीं? गीता माता और गीता पति भगवान। तो माता कहा गया है तो जरूर माता के रूप में प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? माता के रूप में जिसने उस ज्ञान को जास्ती से जास्ती धारण किया हो वो हुई गीता माता। तो कौन हुई गीता माता? गीता माता और गीता पति भगवान। माता के रूप में पालते किसने बजाया? माता के रूप में पालना किसने दी? जिसको कहा जाता है ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। ब्रह्मा को विष्णु की बात का ही का वर्षा नहीं दिया गया। ब्रह्मा जब संपूर्ण बने तब अगले जन्म में जाकर के विष्णु बनता है। तो माता का रूप है वो गीता ज्ञान। गीता माता हमारे सामने कब तक तैयार हो गई? आगे सारा गीता ज्ञान जो 18 अध्याय का गाया हुआ है वो 51 से जब से माउंट आबू में आए तब से धारा प्रवाह वाणियां चलाना शुरू की। चेतन से ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। माँ के रूप में जिसने बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, बड़े से बड़ा प्यार दिया, तो ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा। माँ की तो आदत होती है अंधा लूला लंगड़ा कोढ़ी कानी सुज्जा चोर डकैत कैसा भी बच्चा हो, माँ कभी भी अपने बच्चों को अपनी गोद से अलग नहीं होने देना चाहती। तो कैसा भी पत्थर माल बच्चा हो बाबा से सबने ये अनुभूति की। किस बात की? कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया, भले थोड़े समय के लिए ही मिला हो, जितना बाबा ने हमको प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने हमको प्यार नहीं दिया। तो ये माँ के रूप में जो पालना मिली वो गीता माता से बच्चों से मिलती है। तो वो हमारी हुई चैतन्य गीता माता। लेकिन माता को वर्षा भारतीय परंपरा में नहीं मिलता है। क्या माता परिवार की सेवा के लिए अपने को बांधती है, अपने को अर्पण कर देती है? इसलिए भारत माताओं की महिमा है। भगवान भी आते हैं तो किसकी महिमा करते हैं? भारत माताओं की महिमा करते हैं। माता के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करते हैं। तो वो गीता माता और फिर कोई माता है तो जरूर गीता पति भगवान भी होगा। तो उस माता को कंट्रोल करने वाला जरूर कोई पिता भी हुआ है। ब्रह्मा रचना हुई है, रचयिता हुआ, क्या हुआ? शिव को तो रचयिता नहीं कहेंगे, शिव को रचना भी नहीं कहेंगे। ना आत्मा रचना है और ना आत्मा रचयिता, वो तो बिंदु है। सुप्रीम सोल भी बिंदु है, उसके रचने की बात नहीं। जो चीज अनादि है उसके रचने की बात है नहीं। आत्मा भी अनादि है, सुप्रीम सोल भी अनादि है, वो रचा नहीं जाता। तो रचयिता जो सारी मनुष्य शक्ति का जो बीज है, जिसको प्रजापिता एडम और आदम नामों से कहा गया है, उसके थ्रू ही परमात्मा बाप संसार में प्रत्यक्ष होते। वो हुआ गीता का भगवान और वो हुई गीता माता। कौन? वही ब्रह्मा दादा मेघराज की सोल जिसने प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया, वो किसी ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके जगत माता के रूप में पार्ट बजाती है, जिसको कहते हैं जगदम्बा, शिव, हवा। भगवान लोग क्या कहते हैं? हवा। क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो वैसे भी हवा है। ब्रह्मा की सोल हवा है कि नहीं? असल में माता का पार्ट बजाने वाली कौन है? जिस कन्या में वो आत्मा प्रवेश करके माता का पार्ट जगदम्बा का बजाती है, वो शरीरधारी जगदम्बा है या उसके अंदर प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है? पार्ट कौन बजाने वाला है? पार्ट बजाने वाली तो आत्मा होती है ना, तो मूल तो वो आत्मा है। कौन? कौन सी आत्मा? दादा लेखराज, ब्रह्मा की सोल। तो वो ब्रह्मा जो जगदम्बा माता के रूप में प्रैक्टिकल संसार में प्रत्यक्ष होती है, तो तन के द्वारा, स्त्री चोली के द्वारा। माना ब्रह्मा का जो दाढ़ी मूछ वाला रूप है वो नहीं पूजा जाता। ब्रह्मा ने बड़ा माँ माने माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ कहो, जगदम्बा कहो, दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं पूजा जाता। कौन सा पूजा जाता है? जो प्रैक्टिकल में स्त्री रूप है वो भारतवर्ष में ही पूजा जाता है। जरूर है उसमें प्योरिटी की पावर भी होगी, तब तो सन्यासी भी देवियों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि कन्या का रूप है, कन्या की प्योरिटी में और सन्यासी की प्योरिटी में क्या फर्क हुआ? फर्क क्या है? है? सन्यासी अपवित्र होने के बाद फिर पवित्र बनते हैं, और कन्या, कन्या जन्म से ही ब्रह्मचारिणी। तो जगदम्बा के रूप में वो है गीता माता ब्रह्मा, और वो है जगत पिता, जिस स्वरूप के थ्रू शिव जयंती मनाई जाती है। तो बताना है कि शिव बाबा का नाम आने से कृष्ण के चरित्र गुम हो जाएंगे, फिर गीता झूठी सिद्ध हो जाती है। कौन सी गीता? जो कागज के पत्तों में मनुष्यों के द्वारा लिखी जाती है, चाहे शूटिंग पीरियड में लिखी जाती हो ब्राह्मणों के द्वारा, और चाहे 2500 वर्ष की दुनिया में लिखी जाती हो मनुष्यों के द्वारा, वो दोनों गीता क्या हो गई? झूठी होती। उसमें भी कृष्ण का नाम डाल दिया गया निराकार बाप की जगह, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गीता है उसमें भी नाम किसका डाल दिया गया? जब तक बाबा जीवित थे, मम्मा जीवित थी जो यज्ञ की कंट्रोलर थी, तब तक सिर्फ शिव बाबा याद है ये लिखा जाता था मुर्गियों पर। जैसे ही मम्मा बीमार हुई तब से क्या लिखना शुरू कर दिया? पिताश्री शिव बाबा याद। पिताश्री किसको कहा जाता है? श्री शब्द लगाए हुआ है पिता के बाद, माने ब्रह्मा कुमारियों का स्पेशल जो पिता है वो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, अभी श्रेष्ठ नहीं है। तो जो पिताश्री है वो शिव बाबा हो गया। शिव बाबा याद है ये शब्द से पहले अगर पिताश्री शब्द डाल दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हुआ? पिताश्री के रूप में शिव बाबा याद है तो गीता का भगवान कौन हो गया? पिता श्री मना बनाम ब्रह्मा ही तो गीता का भगवान हो गया ना। तो ये सब झोंक दिया गया गीता में, जो रचना है उस रचना का नाम रचयिता के रूप में डाल दिया गया। कहां गीता पति भगवान और कहां गीता माता का जो बच्चा है उसका नाम डाल दिया जाए, तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए भारतवासी पति तो बने, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां पति तो बने, तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनकी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं बैठती कि दुनिया इन बातों को क्यों नहीं मानती है? जब सच्चाई है तो सारी दुनिया में कोई मानने वाला क्यों नहीं पैदा होता? कोई धर्म का लोग मानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान शिव है, कोई मानने के लिए तैयार हुआ नहीं? आखिर कारण क्या है? समझाने वाले में ही खोट है, वो खुद ही नहीं समझा तो दूसरे कैसे समझ जाएंगे? तो पहली बात है खुद समझें, और समझ करके तदनुकूल प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करें। तो जब इस तरह समझावेंगे तो जो कागज की गीता वो झूठी सिद्ध हो जाएगी, वो द्वापर में और वो संगम युग पर होती है। क्या कहा? तो वो गीता कहाँ होती है, कहाँ तैयार होती है, बनती कहाँ है? द्वापर में। कौन सी गीता? जिसमें साकार कृष्ण का नाम या पिता श्री का नाम डाल दिया जाता है वो द्वापर में तैयार होती है। माना ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में द्वापर में कैसे तैयार होती है? जो सतीजी शूटिंग का पीरियड है सन 36 से 40 तक का, उसमें जब मम्मा बाबा का शरीर छूटता है उसके बाद से मनुष्य गुरुओं का शासन शुरू होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो शासक गया, जो असली शासक था वो योगी का गया। तो यह था राजा तथा प्रजा। मम्मा का स्थान मम्मा की कुर्सी कोई नहीं तो ली होगी, मम्मा की कुर्सी जिसने ली होगी वो उतनी प्योरिटी की पावर वाला तो नहीं हो सकता जितनी मम्मा थी। तो ये रिजल्ट आता है, साथ से बनता है। उसने कृष्ण का नाम रचना का नाम डाल दिया जाता है और गीता झूठी हो जाती है। तो टाइम अगर नहीं लिखा तो भी हर्जा नहीं, अंदर तो चित्रों में बहुत ज्ञान है ना, जो डिटेल में जाने वाले होंगे वो इन बातों को समझ लेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में द्वापर कब से शुरू हुआ? ये ऐसा बनाना है जो मनुष्य देखने से वंदर खा लेंगे। मोदी जी ने बहुत भक्ति की होगी वो ही वंदर खा लेंगे, वो ही बहुत अच्छी रीति ज्ञान को उठा लेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर की बातों को समझेंगे और गहरी बातों को समझेंगे। हमें गहराई में जाने से कोई मतलब नहीं है। कोई बाबा को याद करो, ऊपर ऊपर की बात उठाई लेंगे। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं बुद्धियों को क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, बाप और वर्षों की याद करो। दूसरे मुरली में कह दिया बाप और वर्षों को याद करना यह है चुल्लू पानी, तो चुल्लू पानी में स्नान करना है या सागर में नहाना है? सागर में नहाना चाहिए। तो वो बच्चे बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे, कम भक्ति करने वाले होंगे तो ज्ञान भी कम उठाएंगे। क्या जिनमें जितनी जाति भावना के संस्कार होंगे, भक्ति भावना खराब चीज है क्या? भक्ति भावना खराब चीज नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा युक्त जो भक्ति है वो खराब चीज है। भक्ति और भावना आती है दिल से और ज्ञान आता है तीसरे नेत्र माने दिमाग से। तो दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए ना, एक से काम चल जाएगा क्या? वैज्ञानिकों ने सिर्फ दिमाग का उपयोग किया तो रिजल्ट क्या हुआ? जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के ही संघार का सामान तैयार कर लिया। अपने पांव के ऊपर कुरारा मारा ना, तो सिर्फ बुद्धि ही काम नहीं करती, अकेली भावना भी चाहिए। वो वैज्ञानिक लोग मोस्टली नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते। एटमिक एनर्जी कौन से देश में तैयार हुई? सबके वैज्ञानिक कौन से देश के लोग हैं? नहीं, रशिया। नास्तिकवाद, जहाँ न भगवान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। वो समझते हैं हम ही दुनिया को बनाने वाले हैं, अच्छी दुनिया बनाने वाले सिर्फ हम हैं। हम अपनी शक्ति से चाहे तो दुनिया को एक सेकंड में खलास कर दें, और चाहे तो हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। वो है अहंकारी भगवान और अहंकार, दोनों बातें एक साथ नहीं पनप सकती। भगवान को काम ही प्यारा है।
संकल्प तो कुमारी का संकल्प है, तभी पूजिए, नहीं तो खंडित हो जाती है, और खंडित की कभी पूजा नहीं होती है। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएंगे? बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते हैं, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएगी तो वो लौकिक सेवा आपे ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़।